Hare.
हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। तीसरे दिन बेगम बाजार में यहाँ दामोदर लीला के श्रवण के लिए आप पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कृष्ण भक्तों की मंडली बड़े उत्साह के साथ 3 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया था और इस दास को सेवा का अवसर दिया था। ये महीना कार्तिक का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत उत्तम महात्म्य युक्त है। इस महीने में दिवाली भी आएगी, भगवान राम अपने घर लौट कर आएंगे, भक्तों का मनोरथ पूरा होता है, भगवान हृदय में विराजमान होके आएंगे। भगवान का दिवाली मनाना ऐसा है, दिवाली से पहले हम सब लोग घरों की सफाई करते हैं, चूना पोछी करते हैं, लेकिन असली घर राम के आने का ये हृदय है, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, तब भगवान अंदर प्रवेश करेंगे। ये दिवाली का असली महत्व है और इसलिए इस महीने में हृदय की सफाई करने का कार्यक्रम करना चाहिए। और हृदय की सफाई कैसे होती है? मन पवित्र हरि नाम लिए, भगवान के नाम उच्चारण से, कथा कीर्तन से हृदय पवित्र होता है। भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से, भगवान के ही शक्ति अवेश अवतार व्यास देव लिखते हैं, घर से कृष्ण कथा सुनने का संकल्प करने वाले के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब अवरुद्धते तत्क्षणात सुश्रुत कृत्य, जैसे सुनने की इच्छा मन में घर में करते हो, अभी आए नहीं हो कथा सुनने, घर में इच्छा किए कि आज भगवान की कथा सुनने जाएंगे, दामोदर लीला सुनेंगे, भगवान एकदम हृदय के अंदर आकर और बड़े सावधानी के साथ अवरुद्धते का मतलब ये जो रास्ते के ऊपर ब्रेकर बने हुए ना गाड़ियों को रोकने के, इनको बोलते हैं गति अवरोधक। तो भगवान की गति एकदम रुक जाती है। गति कहां, कौन सी गति है भगवान की? भगवान की गति है कि बहुत से भक्त बुलाते हैं, आइए आइए हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, तो भगवान को तो बहुत से भक्तों के पास जाना है, लेकिन जो भक्त कथा सुनने की इच्छा करता है भगवान वहीं रुक जाते हैं, फिर वहां से कहीं जाते नहीं, गति अवरुद्ध हो जाती है भगवान की। भगवान बहुत ही रसिक है अपना नाम सुनने के, ये भगवान की एक विशेषता है कि वो अपने नाम सुनने के बहुत रसिक है, अति अधिक रसिक है। और कोई भगवान की महिमा सुनता है तो बड़े आनंद में मगन हो जाते हैं। ये भगवान में गुण है, इसलिए ये गुण हम में भी है। आपने देखा है, आपका नाम लेकर कोई कहे कि ये भक्त मानो गोपाल भक्त बड़ा तपस्वी है, बड़ा दानी है, और गोपाल जी कहीं आते हुए गेट से सुनने नाम अपना और कोई प्रशंसा करता हो तो गोपाल का दिल फूलेगा कि नहीं फूलेगा? कोई आदमी आपका नाम लेके प्रशंसा करे आपको अच्छा लगता है ना? क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि भगवान को अच्छा लगता है और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। भगवान में ये गुण है तभी हमारे अंदर गुण आया, नहीं तो कहां से आता? तो भगवान अपनी कथा सुनने में बहुत आनंद लेते हैं। तो ये महीना विशेष करके हरि कथा और कीर्तन के द्वारा हृदय को पवित्र करना है, तो भगवान हृदय में प्रविष्ट करेंगे। ये ये दिवाली का भावार्थ है कि राम हमारे हृदय में प्रविष्ट हो। और राम का अर्थ होता है आनंद, राम आनंद कंद है, आनंद हमारे हृदय में प्रविष्ट हो। तो पहले हृदय में भगवान है नहीं क्या? हाँ है, पहले से हृदय में भगवान है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। भगवान पहले से हृदय में है सबके, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं है? क्योंकि हृदय रूपी दर्पण के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है। भगवान तो हृदय में है, लेकिन हृदय के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, दर्पण के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, तो भगवान का दर्शन नहीं होता। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण का मार्जन करना है, सफाई करनी है। कैसे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के पवित्र नाम से हृदय को पवित्र करेंगे। और इसी कार्तिक महीने में दिवाली के ही दिन जैसे हृदय में राम को विराजमान करना है, ऐसे मां यशोदा ने गोपाल को घर में बांध के रख दिया। वो दामोदर लीला दिवाली के दिन घटी है। और कुंती महारानी उस दिन गोकुल में थी, और कुंती महारानी ने इस लीला का अवलोकन किया था, इसलिए भागवत में पहले स्कंद में प्रार्थना करने का अवसर एक माता को दिया गया है। स्त्री को, मां को पहला स्थान भागवत में प्रार्थना का दिया गया है। पहली प्रार्थना कुंती महारानी की है। और कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, कह रही हैं कि मैंने देखा था, अभी तो आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है ब्रह्मस्तर से, अश्वस्थामा के ब्रह्मस्तर से मेरे बच्चों की रक्षा की है, उत्तरा के उद्र में परीक्षित भक्ति के अंकुर की रक्षा की है। लेकिन उस दिन मैंने आपको देखा था कि यशोदा के भय से आपको ऐसे उक्कल से बांधे हुए थे, ये आपकी लीला हमको समझ में नहीं आती। ये मां कुंती अपना भाव प्रकट कर रही है। तो दिवाली के दिन दामोदर लीला भी हुई, दिवाली के दिन भगवान, और दूसरे दिन इसी कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा हुई। और गोवर्धन पूजा के द्वारा भगवान ने एक तो ये सिद्धांत स्थापित करना चाहिए, चाहे भक्तों के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, केवल अपने निज भक्तों के लिए, कि किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण के आदेश का पालन करने से सर्व अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। एक कृष्ण संतुष्ट सब संतुष्ट, बोला कोई उदाहरण बोला है? दुर्योधन ने पांडवों को परेशान करने के लिए काम वन में दुर्वासा ऋषि को भेजा था दोपहर के बाद, कहा द्रौपदी भोजन कर ले फिर जाके भिक्षा मांगना, और 10,000 शिष्य साथ लेके आया था। महाराज युधिष्ठिर ने तो कह लिया, आप महाराज भोजन कीजिए, बोला मैं जमुना स्नान करके आता हूं। द्रौपदी बोलती है उसको खिलाओगे कहां से, बाबा अकेला थोड़ी है, मैंने तो भोजन कर लिया, वो मेरा जो पात्र था सूर्य का दिया हुआ उसका वरदान तो है, सबको खिला सकता है, लेकिन जब तक मैं नहीं खाऊं, मैंने खा लिया, अब क्या करूं, मैंने तो निमंत्रण दे दिया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, और भीम को कह रहे जाओ उसको लेके, बोले लेके आऊं तो खिलाएंगे क्या, नहीं भीम तुम जाओ बुलाने के लिए। द्रौपदी, कृष्ण कृष्ण क्या करना चाहिए, कृष्ण मैं बड़ी दुविधा हूं। इतनी देर में भागते हुए कृष्ण आ रहे, और आते ही बोलते भूख लगी है द्रौपदी को खिलाओ। द्रौपदी बोलते पहले उनके लिए परेशान, आप भी भूखे ही आए हो, आपको भी भूख लगी है? हाँ बहुत भूख लगी है, कुछ जल्दी खिलाओ। बोला कुछ नहीं है, वो दुर्वासा का प्रतीक्षा हो रही है और यहाँ भोजन का व्यवस्था नहीं है। बोला कुछ तो होगा, बोला कुछ नहीं है, वो बर्तन धोके, बोला इधर लाओ बर्तन। और द्रौपदी का देगड़ा वो पात्र आया, भगवान ने ढूंढा, एक कहीं साग लगा था कि चावल का खन था, एक उठा के मुंह में डाला
और भगवान ने ऐसे मुंह में क्या डाला, दुर्वासा और 10,000 शिष्य डकार देने, ओ क्या खाएंगे, भीम बुला रहा है, भीम बुला रहा है, खाएगा क्या, पेट भर गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो एक
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
तो भगवान संतुष्ट हो गए तो पूरा जगत संतुष्ट हो गया। इसलिए गोवर्धन की पूजा का भगवान ने आदेश दिया और इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया। आप लोग नहीं कर सकते हो, ये भगवान श्री कृष्ण को अधिकार था। इंद्र ने तो बड़ा प्रलय काल जैसा वर्षा किया, लेकिन जो रोक सकता है, जिसने पूजा रुकवाई थी उसमें ये शक्ति भी थी कि इंद्र के उस कूप से अपने ब्रजवासियों की रक्षा भी कर सकता था और रक्षा की। लेकिन इस लीला में बड़ा आनंद ये है कि 7 दिन तक भगवान के सारे परिकर गोप गोपियां 24 घंटे भगवान का दर्शन कर रहे थे। ये भगवान और भक्तों के मिलाने की विशेष लीला इस दामोदर महीने में घटी है। जब इंद्र प्रार्थना करने के लिए आए, भगवान बड़े खुश हुए, कोई बात नहीं, तुम्हारे इस काम से मैं संतुष्ट हूं क्योंकि भक्तों से मिलने का मौका मिला। और फिर देव उत्थान एकादशी भी इस महीने में आएगी, चतुर्मास समाप्त होने लगेगा और ये चतुर्मास के इन दिनों में सारे साधु संत भगवत भजन करते हैं, तो ये महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से इसका नाम दामोदर महीना है, तो हृदय में भगवान को प्रेम से बंधन से बांधने का ये महीना है। अपनी प्रेम की रस्सी को हर साल थोड़ी मोटी बनाते जाओ कि एक साल दामोदर बंध जाए उसमें। ये जीवन छोटा है, रस्सी को मोटा बनाना है। माँ ने बड़ी रस्सियाँ इकट्ठी की थी तब तक नहीं बंधा, तो हमको भी अपनी रस्सी को लंबा करना पड़ेगा। और वो लंबा रस्सी को करने के लिए थोड़ा भजन करना पड़ेगा, थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, कथा सुनने का और कीर्तन करने का, प्रतिदिन कार्तिक में नेम बनाना पड़ेगा, तो भगवत प्राप्ति सुलभ हो सकती है कलयुग में। तो आप सब प्रतिदिन इस दामोदर लीला का रसास्वादन करने के लिए आ रहे हैं, आपका स्वागत है। 8 श्लोकों का ये सुंदर अष्टक दामोदर अष्टक के नाम से सत्यव्रत मुनि के द्वारा पद्म पुराण में अंकित है और श्रीपाद सनातन गोस्वामी द्वारा इसके ऊपर बहुत प्रेममयी भावार्थ और टीका भक्ति वैष्णव की सहनता हरि भक्ति विलास में कार्तक महात्म में विशेष रूप से उल्लेखित है और वैष्णव परंपरा के अंतर्गत इस महीने में सब लोग अपने घरों में, कल यहाँ कथा तो शेष हो जाएगी लेकिन आप अपने घरों में प्रतिदिन
ये कार्य अवश्य करना, दामोदर का एक सुंदर छोटा सा चित्र रखना, घर के सारे परिवार के लोग दीप एक भगवान को सामने दर्शन अर्पण करना, और ये दामोदर अष्टक प्रयास पढ़ने का करना। टूटी फूटी जैसी भी भाषा में पढ़ोगे भगवान समझ जाएंगे, वो आपकी भाषा को नहीं आपके प्रेम को देखेंगे, आपके स्वर को नहीं आपके ताल को नहीं लेकिन आपके दिल के हाल को देखेंगे। तो वो दिल प्रति घर में ये होना चाहिए, और ऐसा संकल्प कर लो आप लोग जो यहाँ प्रचार की दृष्टि से बैठे हो, इस महीने में 50 घरों में कम से कम हम दामोदर का एक दिन जाके दीप करने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप लोग बनाइए कुछ ऐसे पर्चे भी और छोटे फोटो भी दामोदर के लोगों के घरों में दीजिए और जाके ये कार्य कीजिए, ये भगवान दामोदर को अति प्रसन्न करेगा। ये भी इस लीला में पहले दिन हम श्लोक में वर्णन किया था कि दूध को उतारना यशोदा को जाना, यशोदा माँ का दूध को उतारने का जाना भक्त का, जो भक्त होते हैं दूसरों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, और ये दूसरों को भगवान की सेवा में लगाना ये भगवान को बहुत अति प्रिय है। तो इस महीने में बहुत लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है। गत वर्ष केवल दुबई में 500 नए घरों में केवल दामोदर महीने में पहुंचे भक्त, उनके घरों में जाके ये कार्य किया। तो ऐसे बहुत से जगहों पर बहुत विशेष रूप से लोग प्रचार करने के लिए ये महीना बहुत धार्मिक भावनाएं लोगों की होती हैं, तो उनको धर्म की बात बताना आसान है। अब पहले श्लोक के ऊपर पहले दिन चर्चा की थी, सत्यव्रत मुनि का प्रार्थना है अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को, नमस्कार करते हैं प्रार्थना करते हैं ईश्वर कहकर, सच्चित आनंद रूप उनका है, लेकिन कौन से सच्चित आनंद रूप में उनकी आसक्ति है, उनका भाव कौन से रूप में, तब कहते हैं गोकुल में जो रूप मैंने देखा था उस रूप में मेरी आसक्ति है। यह साधारण भक्त की आसक्ति नहीं है। साधारण तो आप संसार में जाके देखेंगे तो पुराने जमाने में लोग कहते हैं दादाजी स्वर्गवासी हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्वर्ग तक हुआ करती थी। अब गया स्वर्ग के नहीं गया इसका पता नहीं है, लेकिन स्वर्गवासी बोल देते थे। कुछ समझदार हुए तो कुछ लोगों ने कहा बैकुंठ वास हो गया, थोड़ा सा और बढ़ गए, और कहीं कहीं महात्मा साधु हैं तो बोलेंगे ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन ये जो महात्मा सत्यव्रत है ये इन सबसे ऊपर उठ गया, और ये केवल भगवान की माधुर्य लीला प्रेममयी लीला जो गोकुल में घटी है, जो ब्रज में घटी है, और जहां केवल कृष्ण अपने स्वयं रूप में प्रकट होते हैं, अवतार नहीं लेते, स्वयं रूप में प्रकट होते हैं, केवल ये लीला ब्रज में दर्शाई जाती है और कहीं भी नहीं। इस लीला का दर्शन और कहीं नहीं हो सकता। गोकुले ब्राजमानम, ये गोकुल की लीला है, और इस लीला में भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वैभव भक्त के प्रेम के सामने हार जाता है। भगवान त्रोलो त्रिलोकी नाथ है, सारा संसार उनके इशारे से चल रहा है, लेकिन वो भक्त के इशारे से बंध जाते। तो ये भगवान का बहुत अति माधुर्य, भक्त वत्सल्य, भक्त प्राधीन जो एक गुण है उसमें इस भक्त सत्यव्रत की बहुत आसक्ति है। बड़ा आश्चर्य, सचित आनंद भगवान को प्रणाम करता हूं, कैसा है आपका भगवान जिसको प्रणाम करते हैं, यशोदा के भय से कूद के भाग रहा है, दोनों हाथों से आंखों को मल रहा है और रो रहा है और श्वास लंबे लंबे ले रहा है। अरे वाह भाई वाह, आपका भगवान हा? आपका भगवान कमाल का है, सचित आनंद रूप भी है और मां के भय से भाग भी रहा है, रो भी रहा है, बोला हाँ, ये रूप जो भगवान का है ये सनक आदि ऋषियों को, ब्रह्मा और शंकर को अति प्रिय है, प्रिय है। ये लीला देखने को उनको भी नहीं मिलती। इससे भागवत के नवे पहले दसम स्कंद के नवे अध्याय में दामोदर लीला है। आठवें अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि यशोदा और नंद ने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि उनको भगवान की बाल लीलाओं का रस आस्वादन करने का मौका मिला। अरे दुआ वसुदेव और देवकी ने जन्म दिया, उन्होंने बाल लीलाएं तो देखी नहीं। तो उस उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। द्रोण वसु और धारा, एक वसु था द्रोण नाम था, वह धारा थी इस पति पत्नी को, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था। जब दामोदर लीला की बात हुई तब ये स्पष्ट हो गया और सुखदेव महाराज ने ये परीक्षित महाराज को बताया कि द्रोण और धारा का ये सौभाग्य नहीं हो सकता है, ब्रह्मा की आशीर्वाद से ये सौभाग्य कहां मिलेगा। स्वयं ब्रह्मा तो ब्रज के अंदर एक पौधा बनने के लिए तैयार है। ब्रह्मा अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि ब्रज की सीमा के ऊपर, ब्रज में नहीं, ब्रज की बाउंड्री के ऊपर कहीं कोई घास तिनका हो जाऊं, आते जाते ब्रजवासी का चरण लगेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उस ब्रह्मा की आशीर्वाद से द्रोण और धरा को और द्रोण को यह सौभाग्य नहीं मिल सकता। अरे जो यशोदा का सौभाग्य है यह ब्रह्मा से ऊपर है। ब्रह्मा भगवान से, शरीर से सटे हुए हैं, भगवान की नाभि कमल से निकलते हैं। भगवान शंकर वैष्णव नाम यथा शंभु, ब्रह्मा जी प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, शंकर निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, और लक्ष्मी जो भगवान के चरणों का संवाहन करती है और छाती के ऊपर लक्ष्मी का स्थान है, इन तीनों को वो सुख और सौभाग्य नहीं मिला जो यशोदा को मिला। तो ये द्रोण और वसु नहीं हो सकते। इस लीला में ये दर्शन है कि इनको ये ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा शंख शंभु और लक्ष्मी को जो सौभाग्य नहीं मिला वो इस गोपी यशोदा को कैसे मिला। तो ये भगवान के नित्य परिकर है, नंद बाबा और यशोदा भगवान के नित्य परिकर है। उसके अंदर द्रोण और धरा ने प्रवेश किया था और उस थोड़ा सा समय के लिए उनको ये आशीर्वाद था, लेकिन नंद और यशोदा नित्य भगवान के परिकर हैं, गोकुल के। वो तो भगवान के नित्य माता पिता के भाव में रहते हैं। तो ये सौभाग्य किसी देव देवता को भी सुलभ नहीं है। इसलिए सत्यव्रत मुनि इस बहुत महत्वपूर्ण भागवत के अंदर जो भगवान की बहुत दिव्य लीलाएं हैं उनमें से दामोदर एक लीला है, जो बहुत जिसके ऊपर बहुत साधु आचार्यों ने बहुत बड़ा भाव अपना प्रकट किया है, वो दामोदर लीला है। अब रो रहे भगवान को देखा और देखने के बाद एकदम बता रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि मैं रोने वाले भक्तों भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी जो ये लीला है, इति दृक लीला, इति दृक स्वलीला आनंद बिकुंडे, ये जो इति का मतलब यहां ब्रज में गोकुल में जो इसकी बाल लीलाएं हैं, ये तो भक्तों को आनंद के कुंड में शराबोर कर देती है, भक्त उसमें मगन रहते हैं, दुनिया का पता भी उनको नहीं रहता। ये ऐसी लीलाएं हैं गोकुल में, इति दृक स्वलीला आनंद भी कुंडे सघोषम, ये केवल अपने गोकुल वासियों के लिए है और किसी के लिए नहीं। मृजंतम भगवान ये दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, ज्ञानी भक्तों को, इसके पीछे है तदिवेश अग्नेशु, जो भगवान के ज्ञानी भक्त भी है, सनक आदि कुमार ज्ञानी भक्त है, ब्रह्मा आदि हैं, ये बड़े ज्ञान में परिपूर्ण है, लेकिन इनको भगवान विशेष रूप से गोकुल वासियों का जो धन्य जीवन है उसका दर्शन करा रहे हैं। اس لیے میں 100 بار اس گوپال کو پرنام کرتا ہوں۔ ستیہ مورت منی یہ کہنے کے بعد چوتھے شلوک میں کہتے ہیں ورم دیو دامودھرم، ورم دیو موکشم نوکش ودھیوا۔ اب دو شلوکوں میں پرارتھنا کر رہے ہیں، چوتھے اور پانچویں شلوک میں پرارتھنا، کس کو پرارتھنا کر رہے ہیں؟ گوپال کو پرارتھنا کر رہے ہیں۔ کون سے درشن ان کو کر رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں گوپال ابھی اس وقت ماں یشودا ان کے پاس کھڑی ہے اور ان کو باندھ رہی ہے اور باندھے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں، ابھی باندھا بھی نہیں ہے، روتے ہوئے گوپال کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو پرارتھنا کر رہے ہیں۔ ورم دیو، آپ ورداتا ہو، کس کس کو آپ نے ور نہیں دیا، سب کو ور دیتے ہو۔ تو مانو بھگوان نے کہا تمہیں کون سا ور چاہیے؟ موکش چاہیے؟ سب لوگ موکش کے لیے آتے ہیں، بولا موکشم نا، موکش نہیں چاہیے، کیونکہ موکش کیوں نہیں چاہیے؟ بولا موکش میں سو سکھ ہے، اپنے سکھ کے لیے موکش چاہیے کہ میرا دکھ نوارن ہو، اس لیے موکش چاہیے، میرے کو ایسا موکش نہیں چاہیے۔ بولا موکش سے ادھک میرا دھام ہے ویکنٹھ، سوالوکیہ مکتی دے دو۔ برہملین نہیں ہونا چاہتے ہو تو سالوکیہ مکتی دے دو۔ بولا موکش ودھیوا، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ بولا اس میں بھی سو سکھ کی اچھا ہے، مجھے سیوا چاہیے، مجھے سیوا چاہیے، اور وہ بھی برج میں چاہیے، اور وہ بھی برنداون میں چاہیے۔ اب دیکھیے بھاو، کہتے ہیں نودا بھکتی شرون آدی کے دوارا جو پھل ملتا ہے وہ بھی نہیں چاہیے۔ پہلا موکش اتم ہے، گیانی موکش پراپت کرنا چاہتے ہیں، بھگوان کی برہم جوتی میں لین ہو چاہتے ہیں، سایوجیا مکتی ہے، یہ پہلا استر ہے۔ اور جو دھیان یوگی ہیں وہ بھگوان کو ہردے میں پرماتما کے روپ میں دیکھتے ہیں اور ویکنٹھ میں واس کرتے ہیں، یہ دوسرا مکتی ہے۔ لیکن تیسرے بھکت ہیں جو نودا بھکتی کے دوارا بھی ویکنٹھ تک ہی پہنچتے ہیں۔ اس لیے روز ہم صبح ایک شبد کہتے ہیں، بہو جنم یدی کرے سرون کیرتن تبھی نہ پائے پربھو، تبھی نہ پائے کرشن پدے پریم دھن۔ روز کہتے ہیں نا صبح سویل، جب نام اپرادھ گنتے ہیں تو یہ شبد کہتے ہیں، بہو جنم یدی کرے سرون کیرتن تبھی نہ پائے کرشن پدے پریم دھن۔ یہ کرشن پریم کا کیول سرون آدی سے، یہ میرے کو نہیں چاہیے پھل، کیونکہ اس کا پھل بھی ویکنٹ آدی ہے۔ یہ تو پریم کا پھل چیتنا مہاپربھو اس پرتھوی کے اوپر لائے، اس سے پہلے کرشن پریم البھیہ تھا۔ چراد ادھتم نج گپت وتم، چراد ادھتم، چراد کا مطلب بہت سمے تک، ادھتم نہیں دیا گیا تھا، چراد ادھتم نج گپت وتم، نج مطلب اپنا سوئم کا، گپت مطلب چھپا ہوا، رہسیہ مائے، وتم کا مطلب دھن۔ بھگوان شری کرشن نے جو اپنا نجی دھن ہے چرکال تک نہیں دیا تھا، اس دھن کو کیسا دھن ہے وہ؟ سو پریم، وہ دھن کیا ہے؟ کرشن پریم۔ وہ دھن کیا ہے؟ سو پریم۔ بولا کیسا ہے؟ نام امرتم، اپنے نام کے امرت کے روپ میں، اتی ادار، بڑی ادارتا سے، ادھارتا کتنا، نمو مہاودنیائے، اتنا دانی ہے کہ پامر تامر کچھ نہیں دیکھتا ہے، ادھیکار نہیں دیکھتا ہے۔ وہ جھارکھنڈ، وہ جھارکھنڈ کے اندر سے جاتے ہوئے مہاپربھو برنداون ارے نام کیرتن کرتے ہیں تو شیر کا ہرن آلنگن کرتی ہے، ارے ہرن کو شیر کھاتا ہے، بھے بھیت بھوک کے ہو کے بھاگنا چاہیے، ایک دوسرے کا آلنگن کر کے اور چاٹ رہے ہیں۔ یہ کرشن پریم کا پردان کرنا مہاپربھو نے پہلی بار اس دھرتی کے اوپر ایسے لائے ہیں۔ چراد ادھتم نج گپت وتم، یہ بھگوت پریم جس کی یہاں چرچا ہو رہی ہے، بھکتی تو پہلے بھی تھی، پریم بھکتی نہیں تھی، پریم ہے کس کے پاس؟ مہاپربھو پریم کہاں سے لائے؟ कहां है कृष्ण प्रेम? कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है? भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम है। भगवत गीता के एक श्लोक के भावार्थ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जहां 18वें अध्याय में, सर्व गुह्यतम ज्ञान में दे रहा हूं मन मना भव मत भक्तो, प्रतिज्ञा करता हूं आपको, सत्य बोल रहा हूं, सर्व धनमान परित्यजे। वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम अधिकारी नहीं हो, फिर भी मैं अपना वचन तोड़ रहा हूं। कौन सा वचन तोड़ रहे हो? बोला, मेरा स्वयं का प्रेम देने का मैंने अधिकार केवल भक्तों को दिया है। वो वचन में तोड़ के आज मैं स्वयं तुमको मेरा प्रेम दे रहा हूं, मैं अपना वचन तोड़ रहा हूं। तो कृष्ण प्रेम देने का अधिकार केवल कृष्ण के भक्तों को है और किसी को नहीं। कृष्ण प्रेम और कोई नहीं। ऐसे भगवान अगर अपने आप देते तो किसी को दे, किसी को नहीं दे तो पक्षपात हो जाएगा ना भगवान के ऊपर। तो भगवान पक्षपात तो किसी नहीं करते, इसलिए कृष्ण प्रेम देने का सारा कार्य अपने भक्तों के हाथ में दे दिए। लेकिन कौन से भक्त के पास को दिया? इसलिए भगवान बंधन में कब आए? जब महत कृपा होती है। महत जब साधु का कृपा होती है तब भगवान से प्रेम भक्ति मिलती है। जब भक्त के हृदय में प्रेम बहुत तीव्र होता है भगवान तब बनते। महत सेवया, महत भक्तों की सेवा से भक्ति मिलती है। और कोई रास्ता, भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता है और कहीं भक्त का जन्म होता ही नहीं है। जन्म ही भक्ति का भक्त के संग में होता है। और भक्ति मिल जाए और भगवान मिल जाए फिर भी भक्त संग मुख्य अंग, तब भी भक्त का संग बहुत मुख्य अंग है जीवन का। इसलिए दुनिया में कौन सी चीज दुर्लभ है? जब महाप्रभु से पूछा गया तो महाप्रभु ने कहा, प्रेमी भक्तों का संग सबसे दुर्लभ है इस धरती के ऊपर। इस दुनिया में दुर्लभ चीज एक है, केवल भक्तों का संग। अगर भगवान के भक्तों का संग मिले तो भगवान आप समझो कि मुट्ठी में है कि जेब में है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दित्ते पार, ये जब आचार्य गाते हैं कि कृष्ण तुम्हारा है, तुम ही कृष्ण को दे सकते हो, मैं तो आपके पीछे भाग रहा हूं, कंगाल हूं, मैं कंगाल की तरह आपके पीछे भाग रहा हूं। ये जो भाव लिखे हैं आचार्यों ने कि कृष्ण प्रेम देने का अधिकार केवल भक्तों को है। लेकिन कृष्ण जब स्वयं अपने प्रेम को देने के लिए आ रहा है तो उसको कोई भक्त भी ऐसा चाहिए जिसके पास परिपूर्ण प्रेम हो। अब कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए और अधूरा प्रेम लेके आए और कृष्ण परिपूर्ण है तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो कृष्ण ने जब ये संकल्प किया कि मुझे अपना प्रेम बांटना है, स्वप्रेम देना है, तो किसके हृदय में ढूंढे जहां परिपूर्ण प्रेम कृष्ण का हो? तो 100% प्रेम कृष्ण को, कृष्ण प्रेम केवल राधिका के हृदय में मिला। परिपूर्ण प्रेम की मूर्ति राधिका है, कृष्ण प्रेम की घनीभूत मूर्ति राधिका है। इसलिए कृष्ण ने राधिका के भाव को अंगीकार किया और कृष्ण के साथ प्लस भक्ति नैपुण्य, परिपूर्ण प्रेम भक्ति जब उस कृष्ण के साथ सम्मिलित हो गई तब गौरंगा महाप्रभु, तब चैतन्य महाप्रभु बने। तो कृष्ण और गौरंगा एक ही है लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु परिपूर्ण भक्ति से संयुक्त है। राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को बांटा है। तो ये जो सत्यव्रत मुनि जी का भाव है, वो कह रहे वर तो आप बहुत देंगे, भगवान दे सकते हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है, मोक्ष दे सकते हैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे नवदा भक्ति का फल वो भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मानो भगवान पूछते हैं आपको क्या चाहिए आखिर, तब ये शब्द निकलते हैं सत्यव्रत के मुख से, इदं ते वपुनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्यावृषतां किमन्यै। ये जो आपका नाथ, फिर नाथ कहते हैं, यशोदा के लिए बाल है, मेरे लिए बाल नहीं हो, यशोदा के बाल हो, मेरे नाथ हो, मैं आपका दास हूं, यहां दास भाव में खड़े हैं। अभी सत्यव्रत दास भाव में है। इदम ते नाथ गोपाल बालम, हे मेरे मां नाथ, ये जो बाल गोपाल का आपका स्वरूप है, बस ये मेरे हृदय में बस जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये दास भाव में नाथ को अपना मालिक, नाथ का मतलब मैं आपका दास हूं, आप मेरे मालिक हो। अब थोड़ी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे नवदा भक्ति का फल भी नहीं चाहिए। नवदा भक्ति बहुत उत्तम है, लेकिन कृष्ण प्रेम उसका फल भी परिपूर्ण तब होता है जब जब महाप्रभु के भक्तों की कृपा होती, नहीं तो नहीं होता। तो फिर इसके आगे कहते हैं, और ये शब्द कह रहे हैं, तो मानो उधर भगवान ने पूछ लिया कि आपको इस गोपाल बाल मेरे रूप में क्या अच्छा लग रहा है, आप इस रूप में कौन सी अच्छी आपको चीज लग रही है। बोला सबसे अच्छा है इस रूप के अंदर आपका मुख है, मुख अंबुज, ये कमल जैसा जो आपका मुख है ना, ये इतना मधुर है, इतना मुस्कुराता हुआ है, और इसके चारों ओर गुंगराले बाल, जो लालिमा वाले स्निग्ध बाल हैं, वो ऐसे लटके हुए हैं, उनके बीच में ये लाल लाल दो होंठ हैं बिंब के फल जैसे, बस ये मुझे बहुत आनंद दे रहा है। अब भाव थोड़ा आगे बढ़ा है, दास से ऊपर उठा है, और एक शब्द बोलते हैं इस श्लोक में, कौन सा वाला मुख आप कह रहे हो, स्निग्ध कुंतली वाला। बोला हाँ वो तो ठीक है, क्या विशेष आपको इसमें। तब कहते हैं गोप्या मोहश्चुंबितम बिंबरक्ता धरम में, वो यशोदा गोपी है ना, ये चुंबन करती है ना आपके मुंह को, ये जो मुंह आपका है। अब भाव क्या आ गया सत्यव्रत में, वात्सल्य भाव बढ़ रहा है, जो गोपी यशोदा चुंबन करती है, मैं निकट से आपके मुख को ऐसे देख सकता हूं क्या। दास से भाव ऊपर हो गया, नाथ से ऊपर, अब भाव कौन सा आ रहा है, कि वात्सल्य भाव है, गोपी आपके मुख को बार बार चुंबन करती है, मैं देख रहा हूं। और ये आश्चर्य नहीं करने, थोड़े दिन पहले हम उल्लासनगर में कहीं थे, ड्रामा बच्चे कर रहे थे, इस उम्र के बच्चे, ये उम्र के बच्चे लड़कियां, एक कृष्ण बना था, एक गोपियां कुछ बनी थी, और कृष्ण को पकड़ा मक्खन पकड़ चोरी करते हुए, तो सब 7-8 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने बोला आपको दंड देंगे, तो बोला कंगनी दे दूं, चूड़ा दे दूं, मुझसे ले लो। बोला नहीं चाहिए, कंगन नहीं लेंगे, चुंबन लेंगे। अब वो छोटे बच्चों को ऐसे सिखाया था, बोला चुंबन लेंगे। अब सब हंस रहे हैं, 7 साल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो एक आके ऐसी गोपी के रूप में चुंबन करती है, तो बोला होले 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 होले, ऐसे मत करो, तो ये सब चारों ओर से चुंबन करती, ऐसा वो दिखा रहे थे उसमें। तो ये जो भाव है, ये बहुत अति निकट का प्रेम का भाव है। अब सत्यव्रत मुनि वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है कि ये जो गोपी जिस मुख का चुंबन करती है, या गोपी शब्द कहने से दामोदर लीला में यशोदा का उल्लेख हो सकता है, और सनातन गोस्वामी कहते हैं अथवा सबसे अधिक भगवान के मुख का चुंबन राधिका को प्राप्त होता है, तो ये भी उसमें उल्लेखित है। लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत बहुत ही दिव्य स्तर के ऊपर है, इसलिए ये भाव प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये भाव सबको समझ में नहीं आएंगे, गुप्त रखते हैं, गोपनीय भाव है। और तब कहते हैं ये आपका मुख जो है गोपाल बाल, ये अगर मनुष्य विरासताम, मेरे मन में ये अगर मुख आपका सुंदर मुस्कुराता हुआ लाल होंठों वाला और काले घुंघराले वालों वाला मेरे हृदय में आ जाए, अलम लाक्ष लभई, लाखों और सारे वरदान आपके मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कहने से क्या अर्थ है, ऐसे कहने से अर्थ ये है, बुद्धिमता ये है कि आप मिल गए तो और चीज किसी को लेने की जरूरत क्या है, जब चिंतामणि मिल जाए तो 100 पर 500 रुपये के नोट की क्या जरूरत है, जिसको लगाओगे वो सोना हो जाएगा। तो भगवान मिल जाएगा तो और चीज की आवश्यकता क्यों हो जाती है। हमें सत्यव्रत मुनि के इस भाव से सीखना चाहिए कि भगवान से कुछ चाहने के बजाय भगवान को चाहना उत्तम चाहना है, भगवान से चाहने से भगवान को चाहना उत्तम चाहना है। और अर्जुन और दुर्योधन के बीच में चाहना का जहां स्पर्धा चल रही थी द्वारका में, वहां कृष्ण ने, वहां अर्जुन ने कृष्ण को चुना था और दुर्योधन को कृष्ण की सेना मिली थी, तो इसलिए अर्जुन कृष्ण को चुना। ये चुनना, कृष्ण को चुनना, भगवान को चुनना, ये चुनना, ये इच्छा उत्तम इच्छा है। भगवान से आज लोगे कल खत्म हो जाएगा, फिर भिखारी की तरह हाथ चांगोगे? भगवान को ही मांग, ये भगवान को मांग रहा है। अब आज का श्लोक जिसके ऊपर अब मन में ये आया कि भगवान में ये मेरे मन में आ जाए, ये करते करते ऐसा विचार आ रहा है कि भगवान की प्राप्ति नाम संकीर्तन के बगैर नहीं हो सकती। भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन है? नाम संकीर्तन। तो अब क्या बोलते हैं? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये कीर्तन कर रहे हैं, ये नाम का कीर्तन कर रहे हैं अभी। अब मन में भाव आया कि भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। अब तो ये भगवान का प्रेम चाहिए, ये मन में भगवान आएंगे कैसे? नाम कीर्तन के द्वारा। केवल नाम कीर्तन के द्वारा अगर शुद्ध भाव से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाएगा तो ये नाम हृदय में भगवान के लीलाओं को ऐसे स्फुरित करेगा। नाम अपने आप में, सब लीलाएं नाम में समाई हुई हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र का जो हरे शब्द है, ये राधा को संबोधन है और कृष्ण आकर्षण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इन दो शब्दों के अंदर और राम परिपूर्ण आनंद का आनंद कंद है, इन तीन शब्दों के अंदर सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण सभी सम्मिलित हैं, कुछ इसके बाहर नहीं है। ठीक तरह से ये अगर हृदय में बैठ जाए तो भगवान की लीलाएं टेलीविजन की तरह हृदय में चल सकती, और चलती हैं, सबके नहीं। रूप गोस्वामी की एक जगह उल्लेख आता है, कहीं भगवत चिंतन में बैठे थे नाम स्मरण में, थोड़ी देर के बाद हृदय में स्फुर्त होने वाली लीला स्फुर्त नहीं हो रही थी, बड़े झटपट आए, अपने बड़े भाई गुरु समान सनातन गोस्वामी के पास गए, कहा भैया रोज नाम जप करता हूं, नाम से भगवान की दिव्य लीला हृदय में स्फुर्त होती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, अब हृदय खाली पड़ा है, कुछ नहीं स्फुर्त हो रहा है, ऐसे मुख से राम राम कर रहा हूं, हरे कृष्ण हरे, लेकिन अंदर में वो भाव नहीं प्रकट हो रहे। सनातन गोस्वामी कहते हैं कोई वैष्णव अपराध हो गया होगा। वैष्णव अपराध होने से नाम अपना फल नहीं देता है। मस्त हाथी की तरह छोटी सी लता होती है भक्ति की, भक्ति के बीज और लता को वैष्णव अपराध रूपी हाथी एकदम उखाड़ के फेंक देता है। वैष्णव अपराध भक्ति की लता का विरोधी है। कहीं आपसे वैष्णव मतलब मैंने तो जानबूझ नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं आता मैंने किसी का अपराध किया है, बोला फिर एक रास्ता है, ब्रज में जितने संत बोलते हैं रह रहे हैं सबका भोजन भंडारा करो, प्रसाद के लिए निमंत्रण दो, सब खाने आएंगे, नहीं आए समझ लेना कि आपसे नाराज है। प्रसाद की व्यवस्था हुई, एक महात्मा नहीं आए, अरे फलानी कुटिया में रहने वाले महात्मा नहीं आए, बोले जाओ उसको मनाओ। रूप गोस्वामी जाके प्रणाम करते हैं, आप प्रसाद भंडारे पे नहीं आए, बोला आपका भंडारा, आप बड़े महात्मा, आपका इतना नाम है, आप हमारे ऊपर हंसते हैं, हम आपका भंडारा क्यों खाएंगे? महात्मा पांव से टेढ़ा था, थोड़ा पांव टेढ़ा था, चलने में लिपक, थोड़ा ऐसे चलना अष्टावक्र की तरह टेढ़ा था, और उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे जब रूप गोस्वामी ध्यान में थे अपने भगवान के नाम स्मरण में। रूप गोस्वामी कहते मैंने को याद नहीं है कि मैंने आपको कहीं देखा है और आपका मैंने अपमान किया हो। बोला उस दिन उस टाइम के मैं यहां से गुजर रहा था, आप फलाने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आप हंस रहे थे मेरे को देखकर। रूप गोस्वामी को हृदय में स्फूर्ति हुई कि उस दिन मैं हंसा तो था लेकिन मैंने इसको तो नहीं देखा था। बोला आपको देख के तो मैं नहीं, बोला आप हंसे थे, बोले नहीं आपको नहीं देखा था उस वक्त, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको प्रार्थना करता हूं आप प्रसाद लेने चले, उस दिन मेरे हंसने का कारण और था। बोला कारण क्या था बताइए, मेरे को नहीं देखा था। तो बोला कारण ये था, उस दिन मैं देख रहा था राधा और कृष्ण वन विहार करते हुए, राधिका को एक फूल ऊपर से अच्छा लगा, कहा कृष्ण को वो उतार के दो, और कृष्ण ने हाथ लंबा करके उस डाली को नीचे खींचा, डाली नीचे आई, राधिका ने एक हाथ से डाली को पकड़ा और दूसरे हाथ से फूल को छीनने लगी, कृष्ण ने डाली को छोड़ दिया, अब राधिका जी उस डाली में ऊपर लटक गई, और ये मैं देख रहा था इसलिए मेरे को हंसी आ गई। वो महात्मा साधु था ब्रज में रहने वाला, दंडवत किया, बोला महाराज मैं समझ नहीं पाया, हो सकता है। तो ये लीला दिव्य भगवान की नाम सुमरण से हृदय में स्फुरित होती है, और ये सत्यव्रत मुनि के हृदय में स्फुरित हो रही है, इसलिए गोपाल लीला को उसने चुना है, दामोदर को, इस लीला से वो पहले से परिचित है। अब कहते हैं नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, क्या करूं मानो भगवान कीर्तन कर रहे, बोलो क्या चाहिए, बोला प्रसिद्ध प्रभु, प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है हमारे ऊपर राजी हो जाओ अथवा हमको प्रसाद दो, प्रसिद्ध का अर्थ है प्रसाद दो, पर क्यों, क्या तुम्हें क्या परेशानी क्या है, तब कहते परेशानी मेरी है दुख चार जाला दिमगनम, मैं तो दुख के समुद्र में डूब रहा हूं, ये संसार सागर में कई जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं डूब रहा हूं, मेरी स्थिति बहुत दीनीय है, दुख जाला दिमगनम, क्या करूं, कृपा दृष्टि वृष्टि, आपकी कृपा की दृष्टि की वृष्टि करो, वर्षा करो, कृपा दृष्टि की वृष्टि करो, अनुग्रह करो मेरे ऊपर, बोल क्यों, अज्ञा मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ईश्वर ईश ग्रहणेश अज्ञा मैं अज्ञानी हूं, और फिर लालसा क्या करते हैं, बोला पहले मैंने आपको प्रार्थना की थी मेरे मन में आ जाओ, अब मेरी इच्छा है कि मेरी आंखों के सामने आ जाओ, इदी इच्छे मेरी आंखों के सामने आप आ जाइए, अभी मन में आप आएंगे फिर थोड़ी देर के बाद नहीं भी आएंगे, लेकिन आंखों के सामने आ जाओ तो मेरी इच्छा अब ये है। अब नाम संकीर्तन कहते देव, देव शब्द कहने का अर्थ है कि आप दिव्य हो, आप दिव्य हो, आप बड़े सुंदर हो, और दामोदर भक्त वत्सलता है कि भक्तों के बंधन में आ जाते हो, मैं भक्तों की लाइन में खड़ा हूं, भक्तों की सेवा करता हूं, आप दामोदर हो, आप बंध गए थे ना भक्तों से, तो कृपा करके मेरे गरीब दीन को दुखी को, बहुत बड़ा दुख में हूं मैं, दुख जालाब दी, दुख के जाल में, जाल कौन सा, जन्म मृत्यु का जाल, अवधि का मतलब समुद्र, भव सागर में गिरा हुआ हूं, कृपा दृष्टि वृष्टि बतानो, अनुग्रह करो मेरे ऊपर, आप कृपा करो, मेरी तरफ मत देखो, मैं लायक नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं तप जप नहीं जानता हूं, मुझसे नाम सम्मान भी नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं हूं, लेकिन आप तो विष्णु हो ना, आप तो विष्णु हो, सर्वव्यापक हो ना, आप सर्वव्यापक हो, आप तो कहीं भी जा सकते हो, अरे कुंजों के अंदर जा सकते थे ना, तो आपको मेरे पास आने में कोई परिश्रम तो करना नहीं पड़ेगा, यही यही आप यही प्रकट हो सकते हो, यही हो ना विष्णु, आप अनंत हो, आप मेरे को दिखाई दोगे तो कमी तो नहीं हो जाएगी ना, आप अनंत हो, कौन सी कमी होगी आप में, आप अनंत हो, बेअंत हो, अब मैं एक आपसे कुछ मांग रहा हूं, मुझे दर्शन दिया तो आपका क्या इसमें घाटा पड़ेगा, कौन सा इसमें, आप अनंत हो, आप अनंत हो और मैं दुखी हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ईश्वर ग्रहण ईश, वहां ईश का प्रभु का भाव क्या है, आप मालिक हो, स्वतंत्र हो, जो चाहो वो कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप किसी से पूछ के मुझे दर्शन नहीं दे सकते हो, आप स्वतंत्र हो, दे सकते हो, और आप मालिक हो, कृपा करो दर्शन दे दो मेरी इच्छा, अब मन में आपको आंखें बंद करके देखने की नहीं है, साक्षात आंखों से देखने का मैं अब चाह रहा हूं, अब लालसा बढ़ गई, भगवान ने थोड़ी मन के अंदर आके पहले कहा मन में आओ, भगवान मन में आ गए, मन में आ गए तो देखा, अब तो मन में तो आ गए हैं, लेकिन अब देख लो तो और अच्छा है, ये भाव बढ़ा, इस भाव को बढ़ते प्रेम में इतना आवेश हो गया और एकदम सोचा कि ये साधारण तो मिलना मुश्किल है, ये भगवान का दर्शन नहीं मिल सकता है ऐसे, कहीं कोई थोड़ी झलक मिलेगी फिर तो बहुत तड़प हो जाएगी, इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान दर्शन दे भी दे उसके बाद नहीं दे तो फिर तड़पता रहूंगा सारी उम्र, कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, ये दर्शन सुलभ भी नहीं है और एक बार मिल भी जाए अगर तो फिर इसके बाद विरह बहुत दुखी करेगा। तब उनको याद आया क्या आप दर्शन देते हो, मुझे मालूम है आप दर्शन देते हो, और दर्शन केवल देते हो नहीं हो लेकिन दर्शन देने के साथ प्रेम भक्ति भी देते हो, और केवल प्रेम भक्ति ऐसी है उसमें आपका दर्शन सदा होता रहेगा, कभी दर्शन उसमें अलोप नहीं हो सकता। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो फिर एक एक पग पग के ऊपर आनंद बढ़ाने वाला दर्शन होगा, तब बोलते हैं मुझे मालूम है आपने दर्शन दिया था। अरे वो तो दो लंपट थे, कुबेर के बेटे थे, धन के मंद में अंध थे। धन का बड़े से बड़ा मद होता है, धन का मद, रूप का मद, मद पीने का मद, अपने कुल का मद, ये चार पांच बड़े मद हैं, उन सब में धन का मद सबसे अंधा करने वाला है, और धन के कुबेर धनपति है, उसके दो बेटे थे, लंपट थे, शराब भी पिया हुआ था, धन धन के मद में अंध भी थे, लेकिन क्या नारद जी की कृपा उनके ऊपर हुई कि साधु शराब भी दे या आशीर्वाद भी दे, चाकू के ऊपर सेब गिरे या सेब चाकू पे ऊपर गिरे तो भी कटना सेब को ही है, साधु शराब दे अथवा आशीर्वाद दे लेकिन भला तो होना ही है। आपने उनको स्पर्श भी दिया, उनको आपने अपना चरण भी लगाया, उनको दर्शन भी दिया, उनसे बात भी की और उनको प्रेम भक्ति भी दी। ये तो मैंने इसी दामोदर लीला में आपको देखा है, मैं तो इसी लीला की बात कर रहा हूं। कुबेरात्मजो यदवत बध मूर्तये, अब ये श्लोक बोल रहे हैं, कुबेरात्मजो, कुबेर के दो बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव, बद्ध मूर्ति आप बंधे हुए थे और आपने उनको किया क्या, तव्या मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, आपने उनको बंधन से मुक्त कर दिया। कौन सा बंधन था, पेड़ बन गए थे, दो अर्जुन पेड़ बन गए थे नारद के शराब से, आपने बंधन मुक्त कर दिया, और प्रेम भक्ति भाजो कृतो च, आपने उसको प्रेम भक्ति दे दी, उसको प्रेम भक्ति आपने दे दी, अपना स्पर्श दे दिया, अपना दर्शन दे दिया, प्रेम भक्ति दे दी। त्वया प्रेम भक्ति स्वकम में प्रिय, वही प्रेम भक्ति जो उनको दी है ना, उसकी मैं इच्छा कर रहा हूं, बस वो भक्ति मेरे को प्रेम दे दो, वो भक्ति दे दोगे तो आपका दर्शन हर समय मुझे होता रहेगा, मुझे निश्चित इस बात का, जो उनको प्रेम भक्ति आपने दी है वो मुझे प्रेम दी भक्ति। अब भगवान ने कहा अरे प्रेम भक्ति तो ठीक है, तुम मोक्ष क्यों नहीं लेते हो, क्यों नहीं मोक्ष लेते हो। अरे अब कहता है भक्ति प्रेम दो उसमें मोक्ष साथ में आता है, ठीक है नहीं आता है तो नहीं आए, मुझे मोक्ष की बिल्कुल लालसा नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं इह दामोदर, इह इह का मतलब इस वृंदावन में, इस वृंदावन में मेरे को वास दे दो, बस मुक्ति नहीं चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए और वो भी वृंदावन में चाहिए, मेरे को ब्रज का वास दे दो, ये ब्रज वास मांग रहे हैं क्योंकि ब्रज में भगवान की लीला नित्य होती है, जहां भी जाओगे आप ब्रज के अंदर आपको कृष्ण की लीला की स्फूर्ति होती रहेगी, कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिबोल
स्वकम पृच्छामि, आपकी स्वयं की प्रेम भक्ति चाहिए और वो भी दामोदर ईय का मतलब यहां कहां वृंदावन में। ये वो ब्रज है जिसमें उद्धव जैसा भक्त एक गुलम लता बनना चाहता है, एक गुलम लता एक एक पेड़ पौधा बनना चाहता है कि कहीं ब्रज के भक्तों के चरण का स्पर्श होने से कभी न कभी प्रेम भक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा जिस ब्रज की सीमा के ऊपर घास बनना चाहते हैं, वृतासुर जो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे मुक्ति वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए, जो उस जूनी में भेजो लेकिन आपके वैष्णव भक्तों का संग मिले, बस ये बहुत है। और महाप्रभु की भाषा में न धनम न जन्म न सुंदरम कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, अरे कई जन्म मिल जाए कहीं भी भेज दो मुझे चिंता नहीं है। तवता हाँ जन्मनी जन्मनी फिर भवताद भक्तिर अहितुकी त्वई, आपकी अहितुकी कृपा आपकी भक्ति भक्तों का संग मिले, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। कहीं भी हूं लेकिन भक्तों का संग मिलना चाहिए। मानो भगवान ने कहा आपको वृंदावन में रहना है, वृंदावन में रहना चाहते हो, अरे कुबेर के बेटों को नारद की कृपा हुई थी, ऐसा कोई महान भक्त कृपा करता है तब ब्रजवास मिलता है। अच्छा नारद तो बड़ा महान भक्त है, मैं किसके पास जाऊं? सत्यव्रत सोचते हुए कहते हैं अब मैं प्रार्थना करता हूं। किसको तब प्रार्थना करते हैं? नमस्ते अस्तु दामिने स्पृत दामिने, बोले नारद तो पता नहीं कहां मिलेगा, इस रस्सी को प्रार्थना करता हूं जिसके द्वारा आप बंधे गए हैं। ये रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं है, ये चमक रही है, इसमें ब्रह्म तेज है, ये ब्रह्म बन गई है तुम्हारे को, क्या आपका स्पर्श हुआ ये ब्रह्म हो गई है और ब्रह्म जैसा इससे प्रकाश निकल रहा है, इस रस्सी को प्रणाम करता हूं। भगवान की तदीय वस्तु को प्रणाम कर रहे, भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान के तदीय वस्तु की सेवा करनी पड़ेगी। तदीय का मतलब है भगवान से संलग्न जो चीजें हैं, वो रस्सी भी है तो रस्सी को भी प्रणाम करते। इस रस्सी को प्रणाम करता हूं, बोला क्यों करते प्रणाम? बोला ये मां के प्रेम की रस्सी है, ये कोई रज्जू नहीं है, कोई गुण नहीं है, रस्सी नहीं है, ये मां की प्रेम के मां यशोदा के प्रेम का बंधन है और ये आपके शरीर से सटा है, इसलिए प्रकाशमान दीपयमान हो रहा है, ये ब्रह्म तेज के समान हो रहा है। अरे इस रस्सी को भी प्रणाम है, आपसे जुड़ी हर चीज को प्रणाम करता हूं। और फिर कहते हैं आपके उदर को प्रणाम करता हूं। ये कैसा आपका उदर है? बोला विश्व धाम ने, इसके अंदर सारे विश्व समाये हुए हैं, मां यशोदा ने आप अकेले को नहीं बांधा है, मां यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड को बांध दिया आपके साथ। अरे दो बार तो मां ने ब्रह्मांड आपके पेट में देखा है, यशोदा ने दो बार इस ब्रह्मांड इसके अंदर देखा है। और ये भी मैं जानता हूं जब सृष्टि होती है ना तो आप गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में आपके नाभि कमल से 14 ये लोक निकलते हैं और ब्रह्मा जी निकलते हैं, 14 लोक आपके अंदर से निकलते हैं ना, तो सारा विश्व आपके अंदर समाया और इसी पेट में समाया हुआ ना, और इसके ऊपर रस्सी कैसे बांधी गई? इस पेट को नमस्कार है। भगवान के उदर को नमस्कार कर रहे हैं, पहले भगवान के तद्य वस्तु और भगवान के अंग को नमस्कार कर रहे हैं। भगवान की बात तो अच्छी है लेकिन रस्सी मुझे कहेगी नहीं कि तुमको भक्ति दूं, पेट भी तेरे पक्ष में आएगा नहीं। बोला ठीक है, फिर मैं एक और को जानता हूं, उसका वास्ता देता हूं, उसको जमानत में डालता हूं, उसके चरणों को पकड़ता हूं और फिर आप ना नहीं कर सकते। बोला किसका नाम लोगे? राधिकाय त्वदीया प्रियाय। अब बोलते हैं बस राधिका आपको बहुत प्रिय है ना, बस मैं उसकी प्रार्थना करता हूं, अब तो मैं उसकी सेवा में लग जाऊंगा। आप फिर ना तो नहीं करेंगे ना, फिर तो मुझे दर्शन देना पड़ेगा, मुझे प्रेम भक्ति देनी पड़ेगी। वैसे प्रेम भक्ति देता कौन है? हरे कृष्ण मंत्र में राधा का तो रोज प्रणाम करते हैं, राधा को ही तो सेवा के लिए प्रतिदिन अपन प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण में हरे शब्द, और हरे शब्द 8 बार है, कृष्ण 4 बार है और राम 4 बार है, हरे डबल टाइम है, हरे 8 बार है। मां को प्रार्थना करते हैं, जगत माता है, राधिका जगत माता है, और इसका एक ही काम है कृष्ण की इच्छा पूर्ति और भक्तों की
पोषण करती है। अहलादी ने शक्ति करे भक्त पोषण, भक्त भगवान और भक्ति तीनों इस जगत के नहीं है, तीनों भगवान के अहलादीनी शक्ति के अंतर्गत आते हैं, भौतिक शक्ति उनको छू नहीं सकती है। भक्त भगवान और भक्ति भगवान की अहलादीनी शक्ति के अधीन है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रित, वो देवी प्रकृति के आश्रित है। अहलादीनी शक्ति करे भक्तेर पोषण, भक्तों का पोषण, पोषण कहते हैं माँ जैसे दूध पिलाती है बच्चे को उसको पोषण बोलते हैं, तो भक्तों की भक्ति का पोषण कौन करता है? भगवान की अहलादिनी शक्ति श्री राधे। राधिकाय त्वदीया प्रियाय, वो तो आपको सबसे प्रिय है ना, बस मैं उसका चरण पकड़ लेता हूं, उसके शरण में चला जाता हूं, और ऐसा एक भी समय नहीं है जब आप उससे अलग हो सकते हो। अनंत लीलाय, उसके साथ आपकी लीलाएं अनंत है, वो हर समय आपके संग में है, बस उसका चरण पकड़ लूंगा तो आपका मिलना बहुत सुलभ हो जाएगा। अनंत लीलाएं के अंदर भाव है, सब लीलाओं में जो अनंत कोटि की लीला है वो भगवान आपकी रास लीला है, लेकिन ये गोपनीय रखा है, बहुत गोपनीय रखा है कि साधारण इसको समझ नहीं सकते। भक्त सब कुछ अपना बलिदान देके भगवान को पाने के लिए जब जाता है तब भगवान के आनंद के रस का आस्वादन कर सकता है। अनंत लीलाय तुभ्यम देवाय तुभ्यम, आप देव हैं, बस अब मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे प्रेम भक्ति दे दो। तो ये एक महीना प्रतिदिन ये गाते हुए मन में ऐसे भाव आने चाहिए, भगवान आप अपनी प्रेम भक्ति दो, आपके भक्तों की कृपा के द्वारा आपके भक्तों के शरण में हम जाते हैं, आप हमको अपनी प्रेम भक्ति दो। वो ऐसा धन है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये धन गोलोक का है, इस दुनिया का नहीं है। भगवान का नाम ये तो महाप्रभु वहां से चोरी करके लाए थे ना, वो नित्य तस्कर भगवान स्मगलर है, और ये राधा के हृदय से इस प्रेम को चोरी लग करके महाप्रभु लाए, और चोरी का माल बांटने के लिए बहुत गुप्त रखा था नवद्वीप के अंदर, श्रीवास आंगन में किसी को आने नहीं देते थे कि चोरी का माल था, मार्केट में नहीं चलेगा, तो मार्केट में कहां देना है, बोला यहां नहीं चलो। रूप गोस्वामी को कहा आपको एजेंसी देते हैं, आप हमको प्रयागराज में मिलना, सनातन गोस्वामी को कहो आप हमारे को बनारस में काशी में मिलना, आप दोनों को वहां देंगे, आप वृंदावन में जाके इसको रीपैक करना, तब ये वापस पूरी दुनिया में प्रेम भगवत प्रेम जाएगा। तो ये भगवत प्रेम ऐसे आया, वही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इस प्रेम को अब प्रकट करके प्रभुपाद के माध्यम से, श्री प्रभुपाद के माध्यम से हमारे को घर घर में दे रहे हैं। तो इस दामोदर अस्तक से कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए और परिश्रम यशोदा की तरह इतना होना चाहिए कि पसीना निकले तो निकलने दीजिए, बाल खुल जाएं तो खुलने दे दीजिए, कपड़ा रेशमी है दंडवत करने में मेला होता है तो होने दीजिए, लेकिन जब तक भगवान की कृपा दृष्टि ना हो तब तक अपना परिश्रम जारी रखिए, और भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो भगवत प्रेम और भक्ति अपने आप अनुग्रह से आ जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये दिव्य 8 श्लोकों का दामोदर अष्टक प्रतिदिन पाठ करने का अभ्यास कीजिए, और भाव भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का कीजिए, और भक्तों के संग में ये कार्य करने से भगवत प्रसन्नता और भगवत प्रसाद प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है अथवा कुछ दो शब्द कोई कहना चाहते हैं अपने भाव से तो निश्चित रूप से कहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ प्रश्न बोलिए।
कृष्णा दो है ना प्रभु, एक तो ब्रज में रहते कृष्ण और एक कृष्ण जो ब्रज को कभी छोड़ के नहीं जाते,
वही एक कृष्ण है, दूसरा वासुदेव है। जो ब्रज को कभी नहीं छोड़ जाते हैं वो नंद नंदन कृष्ण है, और जो दूसरे जो कृष्ण आप दूसरा कहते हैं कुरुक्षेत्र और मथुरा में, वो वासुदेव कृष्ण है, वो वासुदेव कृष्ण है, उसने अवतार लिया है। लेकिन नंद नंदन कृष्ण भाव से प्रकट होते हैं और वहीं रहते हैं, जमुना का स्पर्श होने से असली कृष्ण के रूप में वहीं रहते हैं, केवल यशोदा के पास हैं, वो अभी भी वहीं रह रहे हैं, नित्य लीला कर रहे हैं। उस कृष्ण की प्रार्थना ये कर रहा है सत्यव्रत मुनि, नंद नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण की प्रार्थना है ये। राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, जितना जोश कहोगे हृदय से निकलेगा, दो आंसू आंखों से बहेंगे, तब भगवान अंदर साफ होने शुरू हो जाएगा, कचरा बाहर निकलेगा, तब भगवान अंदर आएंगे, तब दिवाली सार्थक होगी, तब दामोदर हृदय में बंध जाएंगे, तो सारे संसार के मोह जाल समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी को कुछ कहना? हाँ बोलिए। आप चाहिए, मेरे को आपकी सेवा चाहिए, सुख नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। उसमें अपने सुख की लालसा है, इसमें अपने को कष्ट देकर भी दुखी होकर भी आपकी सेवा की आवश्यकता है। जैसे ये उदाहरण जब देते हैं गोपियों का, नारद जी घूमते हुए गोपियों के पास आते हैं, आप कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण कहते हैं मुझे सर दुख रहा है, इलाज क्या है? बोला मेरे भक्त के चरण की धूली चाहिए। तो महात्मा बैठे तपस्या में बैठे उसको जाके हिला के कहता है समाधि से, नारद क्या कर रहे हो? बोला भगवान का भजन कर रहा हूं। बोला उसी भगवान ने भेजा है, दे दे तेरे चरण की धूली, भगवान के सर पे लगानी है। बोला जाता है कि डंडा मारूं, मेरे को नरक में डालेगा? भगवान को मेरे चरण की धूली देगा? हे महाराज घंटी बजा रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, बड़े तन्मय से गा रहा है। नारद ने कहा चुप थोड़ा ठहरो, क्या कर रहा है? बोला भगवान की पूजा कर रहा हूं। बोला वही भगवान ने भेजा है, दे दे चरण की धूली। बोला निकलो यहां से, एक भी नहीं दे रहा है। बड़ा घूम के थक गया, ब्रज में आया, गोपियों ने कहा कहां से आ रहे? बोला गोपाल के वहां से आ रहे। बोला कैसे गोपाल? बोला सर में दर्द। बोला चाहिए क्या? बोला चरणों की धूली। अरे सबने बोला और लाए घर से चाकू, बोला जितना चाहिए खुर्च के लो, बोरी भर के ले जाओ। नारद बोला तुम्हें डर नहीं लगता नरक में जाओगे? अरे बोला नरक सौ नरक में जाए, उसके सर का दर्द ठीक होना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जो भाव है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, हमें दुखा है उसकी परवाह नहीं। भगवान की प्रसन्नता वो मुक्ति में नहीं है, वो भक्ति में। तो प्रेम भक्ति में सेवा चाहिए, मुझे ब्रज में सेवा चाहिए। और सेवा भी कैसे? अनुगत होकर। किसकी? जो भगवान के पहले सेवक है। अगर वात्सल्य प्रेम है तो नंद यशोदा के अनुगत होकर सेवा करनी पड़ेगी। सखा प्रेम है तो सुबल सखा के मधुमंगल के अनुगत होकर सेवा करनी पड़ेगी। माधुर्य प्रेम है तो ललिता विशाखा के अनुगत होकर सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी तक न ब्रह्मा को ये सौभाग्य मिला है, न शंकर को मिला है और न लक्ष्मी को मिला है, क्योंकि वो गोपियों के अनुगत नहीं होना चाहते, इसलिए ये सौभाग्य नहीं मिल सकता। तो ये तो सुख अपने सुख का भाव नहीं, भगवत सेवा प्राप्ति की लालसा है, भगवान की नित्य सेवा मिल जाए, ये भाग। आपका क्या प्रश्न है बेटा? कुबेर, नल कुबेर और मणिग्रीव, नल कुबेर मणिग्रीव कीर्तन। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है?
हाँ,
ढाई साल, पौने तीन साल और तीन साल के अंदर,
तो जो गिरधारी की लीला है
वो सात साल की है। कॉम्बिनेशन में नहीं करूं गो, ये तब तक इंद्र पूजा होती थी और इंद्र पूजा कई दिन होती रही। ये तो गोकुल में हुई है और गोवर्धन लीला भगवान को हुई है, तब भगवान वृंदावन में रह रहे थे, ब्रज में आ गए थे, गोकुल छोड़ के आ गए थे, तब भगवान की आयु सात साल की थी, तब भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई थी। लेकिन कार्तिक महीने में अभी जो हम मना रहे हैं इसी महीने में गोवर्धन पूजा हुई, तो महीना तो हर साल आता है। तीन साल का भगवान था तब भी आया और सात साल का तब भी कार्तिक आया। हाँ हाँ, ऐसे बहुत से लोग हम रोज देखते हैं, भक्ति नहीं करते, हम 10 साल से उनके साथ रह रहे हैं, उनको जबरदस्ती थोड़ी बोलेगी। जब नंद बाबा देखेगा कि अब मेरा बेटा जो कह रहा है वो ठीक है, अभी अभी वो मानने के लिए हो तैयार हो गया, तब उसको बोल दिया। پہلے بولا ہوتا تو بڑا بچہ ہے, چپ کر کے بیٹھو, ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ بھی بدھی مانی ہے کہ کب کہنا چاہیے, کس کو کہنا چاہیے, اس میں بھی بدھی چاہیے, کب کہنا چاہیے, کس کو کہنا چاہیے, اور جب کہو تو سفلتا بھی اس میں ہونی چاہیے, نہیں تو ایسے زبان خراب کرنے کی ضرورت نہیں. تو بھگوان نے جب دیکھا کہ نند اپنند آدی سب ماننے کو تیار ہوں گے تب ترک دیا, اور ترک دینے کے بعد ہی بھگوان نے اپنے آپ کو اس کشٹ سے بچانے کی بھی ان میں کھمتا تھی تب یہ کام کیا, نہیں تو نہیں کرتے. بھیشم پنچک پانچ دن آخری کارتک کے بھگوت پراپتی کے لیے, بھیشم کا ارتھ ہوتا ہے بہت گھور کشٹ سہنا. بھیشم شبد بھیشم پتاما کا اس لیے پڑا کہ اس نے ایک گھور وچن کر دیا کہ میں آجیون برمچاری رہوں گا, تو اوپر سے آواز آیا بھیشم بھیشم بھیشم, نام بھیشم ہو گیا. بھیشم کا مطلب بہت کٹھن پریشرم ہو تپسیا. یہ پانچ دن تک کچھ بھکت جو چترما سے ورت کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں, کیول گائے کا پانچ گوے کا سیون کرتے ہیں, بہت بڑے کٹھن ورت کرتے ہیں, اس لیے کہ بھگوان کی پریم, یہ کٹھن ورت کرتے ہیں اپنے کو کشٹ دے کے بھگوت پراپتی کے لیے. تو کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں ایسا, پانچ دن انتم جو ہے ایک دن گائے کا گائے کیول گوبر لیتے ہیں, دوسرے دن موتر لیتے ہیں, پھر گھی لیتے ہیں, پھر دہی لیتے ہیں, ایسے پانچ گوے کا سیون کرتے ہیں تھوڑا سا کیول, اور کچھ نہیں کرتے ہیں, اور آخری دن پہ پھر دوسروں کو براہمنوں کو اور سادھو ویشنو کو بھوجن کرانے کے بعد اپنے ورت کو کھولتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں ابھی یہ کرتے ہیں برج میں رہتے ہوئے, لیکن پرچار کرنے والوں لوگوں کے لیے یہ سمبھو نہیں ہے, لیکن جو برج میں نشچت روپ سے رہ رہے ہیں وہ یہ کرتے. وہ پانچ دن میں تپسیا کرنے سے پورے چترماس کا پھل بھی ملتا ہے, بھائی چار مہینہ نہیں ہو سکتا ہے تو پانچ دن, لیکن پانچ دن اتنے کڑے ہیں کہ ہر وہ ہر ایک نہیں کر سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو کیول سارا یہ چترماسے میں اور دامودر مہینے میں بھگوان کا کتھا کیرتن زیادہ ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں سب پھل دینے والا ہے, زیادہ کٹھن تپسیا کرنے کی اتنی آوشیکتا نہیں ہے. جو کر سکے وہ ٹھیک ہے, لیکن سب کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن سرلتا سے سب بھگوان کا بھجن کر سکتے ہیں. اور کسی کا کوئی پرشن ہے؟ نہیں, کیرتن کریں. ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے. مہاراج جی کا بھی دھنیہ واد کرتے ہیں, پدھارے ہیں, یہاں درشن دیا ہے.